તારીખ 26/12/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સોનગઢમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 33.
પત્ર લખવાની શરૂઆત એમને એક પોસ્ટકાર્ડથી કરી છે. સહજ વિકલ્પ લંબાઈ ગયા છે. પહેલો પોસ્ટકાર્ડ લખ્યા પછી બીજું લેખું, બીજું લેખું પછી ત્રીજું લેખું, એમ એક સાથે 8 પોસ્ટકાર્ડ લખાના છે. સંકલન કરતા એ એક પત્રની અંદર 8 પોસ્ટકાર્ડનો સમાવેશ કરીને પત્ર છાપ્યો છે. હા, એટલે શું કે એક પોસ્ટકાર્ડ પૂરું થઈ ગયું, લખવાનો વિકલ્પ ચાલુ રહ્યો, એટલે બીજો પોસ્ટકાર્ડ હાથમાં લીધો. બીજું લખત પૂરું થઈ ગયું તો હજી લખવાનો વિકલ્પ રહ્યો, એટલે ત્રીજું લખ્યો. એમ કરતા કરતા 8 પોસ્ટકાર્ડ લખાણા સહજતાએ, કેમ કે એ પોતે નક્કી નથી કરતા કે મારે આ લખવું છે ને આટલું લખવું છે, એવું નક્કી નથી કરતા. જેને એમ કહે કે પ્રી પ્રોગ્રામ, કે આ માણસને આપણે આવી રીતે આટલો પત્ર લખીએ અને એની અંદર લખવાની વિગત વધારે છે માટે પોસ્ટકાર્ડમાં નહીં માય તો લાવો કવર લઈને બેસીએ, એવું નથી રહ્યું. આમાં પોસ્ટકાર્ડ લખતા 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 8 પોસ્ટકાર્ડ લખ્યા છે. એ ક્યાંય કેવી રીતે ખબર પડે છે કે નીચે એમણે છેલ્લા 8મા પોસ્ટકાર્ડમાં એ વાત લખી છે કે આજે આ 8મું પત્તું લખીએ છીએ અને એ પહેલાં 7 પોસ્ટકાર્ડનો મેટર છે. વિભાગ પાડીએ આપણે એક એક પોસ્ટકાર્ડના મેટરનો તો એ 7 પોસ્ટકાર્ડ નીકળે છે. બરાબર, એ બહુ પાત્ર જીવ છે. અને જે આગળના પત્રમાં થોડો ઉલ્લેખ છે એમના વિષયનો કે દર્શન પરિષદ અને વેદતા હતા, મુમુક્ષુના ભૂમિકામાં જેને આજે ગુરુદેવે ક્ષેત્ર શુદ્ધિ કહી, આજના પ્રવચનમાં ક્ષેત્ર શુદ્ધિ એવો શબ્દ આવ્યો હતો. શું એ ક્ષેત્ર શુદ્ધિ માટે દર્શન પરિષદનું ઉત્પન્ન થવું અનિવાર્ય છે. દર્શન પરિષદ એટલે શું કે મિથ્યા દર્શનનો પરિષદ લાગે અને સમ્યક દર્શનનો વિરહ લાગે, અથવા આત્મદર્શનનો વિરહ લાગે, આત્માના દર્શનનો વિરહ લાગે, એને દર્શન પરિષદ કહે છે. અને એ દર્શન પરિષદમાં જીવ જ્યારે આવે મુમુક્ષુ, ત્યારે એનો દર્શનનો અનુભાગ સારો એવો ઘટે છે. એટલે મિથ્યા દર્શન ગળે છે, હિંસત્વ થાય છે, એની શક્તિ તૂટે છે. આમ નામ દબાતા જો આગળ દબાયા જ કરે યથાર્થ પ્રકારે તો એ એટલું દબાવવાને યોગ્ય થઈ જાય કે દબાઈને ઉપશમ થઈ જાય. ઉપશમનું બીજું નામ દબાવવું છે ને દબાવવાનું બીજું નામ ઉપશમ છે. એને ઉપશમ સમ્યક દર્શન કીધું છે. શુદ્ધ ચિત્તથી વિદિત કરેલી તમારી વિજ્ઞપ્તિ પહોંચેલ છે. કૃષ્ણદાસભાઈનો જે પત્ર છે એની અંદર એમણે વિજ્ઞપ્તિ કરી છે. એ વિજ્ઞપ્તિ શુદ્ધ ચિત્તથી કરેલી છે, શુદ્ધ અંતઃકરણથી કરેલી છે. કૃષ્ણદાસભાઈનો એક પત્ર ચાલે છે, 26મા વર્ષે લખેલો છે, 8 પોસ્ટકાર્ડ લખ્યા છે. સંકલન કરતા એ એક પત્રની અંદર સમાવેશ કર્યો છે. તો એમનો જે પત્ર પહોંચ્યો છે એમાં એટલી વાત એમણે જણાવી છે કે તમારા પત્રની અંદર અમે તમારો ભાવ માપ્યો છે અને એમાં તમારો અંતઃકરણની શુદ્ધતા દેખાય છે. અંતઃકરણની શુદ્ધતા એટલે શું? અંતઃકરણની શુદ્ધતા એટલે જે કોઈ જીવને આત્મકલ્યાણ કરવાની શુદ્ધ ભાવના થાય છે, શુદ્ધ અંતઃકરણથી ભાવના થાય છે કે આ એક મારે જીવનની અંદર કરી લેવા જેવી ચીજ છે, એવું દેખાણું છે ગોપાળુદેવને, એવું દેખાણું છે કૃષ્ણદાસના એ પ્રત્યે કે તમારી ભાવના છે એ શુદ્ધ ચિત્તવાળી છે. અને જ્ઞાનીઓ માટે આ એક બહુ પ્રમોદનો વિષય છે કે કોઈ પણ મુમુક્ષુ જીવ શુદ્ધ અંતકરણથી પોતાની આત્મશુદ્ધિ ચાહે છે, એને ખૂબ જ આદર કરે છે, ઘણો રિસ્પોન્સ આપે છે, જેને કહીએ એ આગળ વધે એ જાતનો રિસ્પોન્સ આપે છે. આ એક વિશેષતા છે અને એ એમના પત્રોમાં જોવા મળે છે. આઠ પુષ્કાળ લખ્યા છે, એ આઠ પુષ્કાળનો અર્થ જ એ છે કે પોતે ગુજરાતીમાં તો સમજાંગે નહીં સમજાંગે, સમજાંગે અભી તો થોડા પ્રેક્ટિસ હો ગયા. બહેન હૈદરાબાદ સે આઈએ કલ રાત કો, બહુત ભાવના વાલી બહેન, હું હૈદરાબાદ જાઉં છું ત્યારે તો હિન્દીમાં એમના માટે સ્વાદ વાંચન કરવું પડે છે. હવે આપણે ગુજરાતી સમાજમાં પરિચય છે એટલે ભાષા આસ્તે આસ્તે અચ્છા. ભાઈ સાહેબ કો ભી થોડા ગુજરાતી માં હું તો બિલકુલ નહીં સમજતે. અચ્છા, એમના ઘરેથી પણ આવ્યા છે, એમને તો જરા તકલીફ પડશે, આપણને લોકોને તકલીફ નહીં પડે, બરાબર છે. થોડી ભૂમિકા કે વાત હોય છે દોહરાતા હું મેં ફિર છે કે કૃષ્ણદાસ ભાઈ કરકે મુમુક્ષુ થે જો કૃપાલુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી કે પરિચયમાં આવ્યા હોય છે, પાત્ર જીવ છે, उनको एक पोस्टकार्ड लिखने का चालू किया है, फिर उनको विचार का जो फ्लो है वो इतना चालू रहा तो लिखते ही रहे, एक पोस्टकार्ड पूरा हो गया तो लिखा कि चल दूसरा पोस्टकार्ड में थोड़ा और लिख दो, थोड़ा और लिख दो करके आठ पोस्टकार्ड लिखा है एक साथ. तो इतना रिस्पॉन्स क्यों दिया है? तो जो सामने जो जीव है वो अच्छी पात्रता वाला था. आगे के एक चिट्ठी में इसका एक जिक्र आया है, उसमें लिखा है कि आप दर्शन परिसर को वेदते हैं सो ठीक है. दर्शन परिसर मैंने क्या कि आत्मदर्शन का जिसको वियोग होता है, जैसे प्रियजन का वियोग में आदमी को रुदन भी आता है, खेद होता है, बार बार स्मृति आती है, ऐसे अपना परमात्मा निज निर्दोष परमात्मा परम स्वरूप का जिसको वियोग है उसको इसका दुख महसूस होता है. और ये क्षेत्र विशुद्धि जिसको आज गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, मुमुक्षु की भूमिका में ये परिस्थिति एक दफे अवश्य आती है. तो अपना निज परमात्मा से दूर नहीं रह सकता, इसका दर्शन के अभाव में वो जी नहीं सकता, तो उसको बहुत दुख होता है. उस वक्त इस स्थिति में दर्शन वो काफी मात्रा में उसकी जो शक्ति है वो हीन हो जाती है. शास्त्र भाषा में ऐसा कहते हैं कि दर्शन मोह का अनुभाग घट जाता है. अनुभाग मैंने रस, रस मैंने शक्ति. जब शक्ति टूट जाती है प्रतिपक्ष भावों के, तब आत्मा का जो बल है वो अधिक काम कार्य कर सकता है, काम करने लगता है. तो ऐसा एक मुमुक्षु है जिसको ये पत्र लिखा है. वो पत्र लिखने में सहजता भी जो है वो मैंने कृत्रिमता नहीं है, वो ऐसी है કે ખુદ કોઈ સબ્જેક્ટ હૈ વો પહેલે સે નક્કી નહીં કર લેતે, નિશ્ચિત નહીં કર લેતે. ક્યા સહેજ જો વિકલ્પ આયા, ફ્લો આયા, વિચાર આયા, લિખ દિયા સો લિખ દિયા, રહે ગયા સો રહે ગયા. ઇતની સહજતા સે વો પત્ર લિખ રહે હૈ. તો કભી તો કિસી કો એક હી પંક્તિ લિખ કે પોસ્ટકાર્ડ છોડ દેતે હૈ, કભી લિખતે લિખતે અધૂરા રખ દેતે હૈ તો પોસ્ટ નહીં કરતે હૈ, કભી અધૂરા રહે જાતા હૈ તો દો ચાર દિન યા પંદરા દિન કે બાદ પૂરા કરતે હૈ, યા કભી પૂરા નહીં હોતા તો અધૂરા અનપોસ્ટેડ રહે જાતા હૈ. એસે બહોત સહજતા સે બાહ્ય પ્રવર્તે થે, એસા ઇનકી બહોત છાનબીન કરને સે યે માલૂમ પડા હૈ. યે ભી એક સહજતા હૈ જ્ઞાન દશા કી. તો પહેલી પંક્તિમાં વો લિખા હૈ કે શુદ્ધ ચિત્ત સે વિદિત કી હુઈ આપકી વિજ્ઞપ્તિ પહોંચી હૈ. શુદ્ધ અંતકરણ સે આપને વિજ્ઞપ્તિ, મેને વિનંતી કિયા હૈ, વો માલૂમ પડી હૈ કે આપકા જો અંતકરણ હૈ વો આત્મહિત કે લિયે બિલકુલ તૈયાર હૈ. ઓર યે એક બહોત અચ્છી બાત હૈ, જો મુમુક્ષુ જીવ કે ભૂમિકા કી નીવ જો હૈ વો ઇસ જગહ પર હૈ. અગર કોઈ મુમુક્ષુ ઇસ નીવ પે ખડા રહ કરકે આગે બઢને કા પ્રયાસ નહીં કરતા તો પ્રાય વો આગે બઢી નહીં સકતા. મેને શાસ્ત્ર જ્ઞાન મેં વિદ્વાન હો સકતા હૈ, યા ક્રિયાકાંડ, યા તપશ્ચર્યા મેં, યા ભક્તિ મેં, યા કુછ ભી બાહ્ય ક્રિયા મેં કુછ ભી કર સકતા હૈ, લેકિન આત્મહિત કે વિષય મેં વો ખાલી ખાલી રહેતા હૈ, શૂન્ય રહેતા હૈ. યે એક એસી નીવ હૈ કે જિસ પર 14 મજલે કા એક મકાન હોને વાલા હૈ. જૈસે અપન એક મજલે કા મકાન કરે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, તો ઉસકા નીવ 3 ફૂટ 5 ફૂટ મેં ચલ સકતા, લેકિન જિતના મકાન ઊંચા ઉતના હી ઉસકા બેઝમેન્ટ જો હૈ ઉતને મજબૂત કરના પડતા હૈ. યે એક બાત બહોત જરૂરી ચીજ હૈ. પૂજ્ય ગુરુદેવ ને ઇસ પર તો એક સૂત્ર દિયા હૈ સારે મુમુક્ષુ સમાજ કો હમ લોગ. યે અપને સ્વાધ્યાય મંદિર કી જો ડેક્કન સાઇડ કા જો દીવાર હૈ, જહાં અપન સુનતે થે પ્રવચન, ઉસમે દક્ષિણ દિશા કા જો દીવાર હૈ ઉસ પર 1 ફૂટ કા અક્ષર સે યે સૂત્ર લિખા હૈ. પૂર્ણતા કે લક્ષ્ય સે શરૂઆત, વહી વાસ્તવિક શરૂઆત હૈ. શરૂઆત કહું મેને નીવ કહું, એક હી બાત હૈ. ઉસમે ક્યા હોતા હૈ કે શુદ્ધ અંતકરણ સે પૂર્ણ શુદ્ધતા કા ધ્યેય, ધ્યેય મેને ગોલ, હર કામ મેં એક ટાર્ગેટ બનાના પડતા હૈ. જહાં તક આદમી અપના ટાર્ગેટ નહીં બનાતા હૈ, તૈયારી ઉસી કે મુતાબિક હોગી, ઉસી કે અનુપાત મેં હોગી. જો ચના કુરમુરા બેચને વાલા હૈ, ઉસકા ટાર્ગેટ હૈ કે શામ કો 25-50 રૂપિયા મિલ ગયા ચલ જાયેગા, તો ઉસકી તૈયારી ઉસી કે અનુપાત મેં હોગી. ઓર જો 500 કરોડ કા એક પ્લાન ડાલેગા, 1000 કરોડ કા કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ડાલેગા, તો ઉસકી જો તૈયારીયાં હૈ વો ઉસી કે અનુપાત મેં હોગી, નેચરલ હૈ. તો મુમુક્ષુ કી તૈયારી કિસ અનુપાત મેં હોની ચાહીએ, યે એક બહોત મહત્વપૂર્ણ વિષય હૈ. જહાં તક ઇસ મહત્વ ઠીક ઢંગ સે બરાબર નહીં હુઆ, વહાં તક નીવ બરાબર નહીં હૈ, ઇસ પર જિતના ભી આપ સ્ટ્રક્ચર બનાવો, ટૂટ મત, ટૂટ જાને વાલા હૈ. જો ભી ચીજ ખર્ચ કિયા, સમય કિયા, સબ બેકાર, ઇતના નુકસાન હી હોને વાલા હૈ. તો ઇસ નીવ સે જો કામ નહીં ચાલુ હોતા હૈ, તો કોઈ વિદ્વાન બન જાતા હૈ, કોઈ ગાયક બન જાતા હૈ, કોઈ તપશ્ચર્યા કરના વાલા બન જાતા હૈ, કોઈ ક્રિયાકાંડી બન જાતા હૈ. વૈસે ઉસકા સબ કી સબ પરિશ્રમ જો હૈ વો વ્યર્થ જાતા હૈ. दूसरा उसको अहम भाव हुए बिना रहता नहीं कि मैंने इतना इतना किया, वो अभिमान में आएगा आएगा ही आएगा, क्योंकि पर्याय दृष्टि तो है ही अनादि से, और पर्याय में विशेषता होगी। परसों हमारे एक बात चले थी, भाई साहब बोले कि हम परिणाम हमारे देखते हैं तो पहले से तो हमारा परिणाम कुछ ठीक लगता है। हमने कहा कि ये तो देखने का तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इस लाइन में आने वाले किसी भी मुमुक्षु के पहले का जीवन तो उतना अच्छा होता ही नहीं है, सांसारिक जीवन तो उतना अच्छा नहीं होता है जो इस क्षेत्र में जो प्रकार के परिणाम होते हैं, जैसे भाव होते हैं, तो पहले से मिलान करेंगे तो अपने को अच्छा मान लेंगे, अच्छा ही मान लेने से तो वहां पर फिर संतोष हो जाएगा कि चलो इतना तो काम किया आपने, इतना तो काम किया। और वो भी कैसे मान लिया, वो टारगेट बनाए बिना। जिसने टारगेट बनाए वो क्या देखेगा कि मेरे बहुत अधूरा है, अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, अभी तो इतना ही मिला है, इतना बाकी है, इतना ही मिला है, इतना बाकी है, वो जोर से काम करेगा और मिल गया वो ठंडा हो जाएगा। तो ये काम करने का जो स्पीड है या मूड है, इनिशिएटिव जो है, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है, पूर्ण शक्ति, क्योंकि इस लाइन का अंतिम परिस्थिति है तो सिद्ध पद है, मामूली चीज नहीं है, जिसकी कोई कीमत विश्व के कोई पदार्थ से भी नहीं सकती। कोई टर्म नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि जिसका हम मूल्य कर सके। सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख सहित, वो तो एक प्लस पॉइंट लिया। नुकसान से कितना बचा कि अनंत काल के 84 लाख योनि के जन्म के काल में जो दुख होता है, वेदना होती है, उससे बच गया। मरण के काल में प्राण छूटने में जो भी वेदना होगी, इससे छूट गया। जन्म और मरण के बीच में जो भी अशाता की वेदनाएं, पीड़ा, बाधा, रोग, एक्सीडेंट कोई भी होगा, इसकी जो वेदना है, इससे बच गया। अगर ये कुछ नहीं हुआ तो भी टेंशन तो होता ही है, जो सबसे अधिक दुखदायक है। इस टेंशन के दुख से भी बच गया। मैंने दुख तो हजारों प्रकार के हैं, लेकिन ये 4-5 मुद्दे में तो सबसे बड़ा दुख है। जन्म के काल में प्राणी को बहुत दुख होता है, मृत्यु के काल में बहुत होता है, एक टेंशन में बहुत होता है कि आपघात को भी पसंद करता है, और एक पीड़ा वेदना सहन नहीं कर सकता है। सभी प्रकार के दुख रूप जो नुकसान है, यहाँ तो नुकसान दुख सुख का ही है, दूसरा कोई नुकसान का टर्म नहीं है इधर, तो ये दुख, दुख से इतना बच गया और इतना सुख मिल गया, नुकसान इतना बच गया, मुनाफा उतना हो गया। अब बताइए कि इसका कीमत कितना है, इस चीज का नींव कैसा होना चाहिए। ये बात उन्होंने नाप ली है अगले के पत्र में कि आपकी जो विज्ञप्ति है शुद्ध अंतकरण से हुई है, उनको मालूम भी हुआ है इस बात को। अब वो शुरू करते हैं अपना पत्र कि सर्व परमार्थ के साधन में परम साधन व सत्संग है। परमार्थ के सभी साधनों में बाह्य साधन बहुत है, अनेक प्रकार के हैं, लोग अपनी रुचि के अनुकूल अपने साधन को जुटाते हैं, प्राप्त करते हैं और उसमें लगे रहते हैं। ये सभी साधनों के का सारांश करके मैंने टोटल लगा करके एक बात रख दी है कि आत्मकल्याण, परमार्थ मैंने आत्मकल्याण के किसी भी साधनों में सत्संग जैसा कोई साधन नहीं, और सत्संग में भी क्या कि सत्पुरुष के चरण समीप के निवास है, उसी को हम सत्संग कहते हैं। सत्संग मैंने क्या कि सत्पुरुष के चरण समीप का निवास को जो चाहता है वही सत्संग को चाहता है। अगर सत्पुरुष नहीं मिलता है तो जिसको शुद्ध अंतकरण से आत्मकल्याण करने की भावना हो, ऐसे जो मुमुक्षु हो, इनके समागम में आत्मकल्याण का इलाज जो भी है उनकी चर्चा परिचर्चा विचारों का आदान प्रदान और उसी विषय में हम कैसे आगे बढ़ें, हमारी भूल हमारे दोष हमारे देखने में नहीं आवे तो आपके अगर ध्यान में आ जाए हमारी भूल या हमारे दोष आप बता सकते हैं। ऐसे जिसको शुद्ध अंतकरण से बात है वो तो उसी प्रकार के विज्ञप्ति रखेंगे कि आप हमारी भूल या हमारे दोष बताएंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा, हम उपकार मानेंगे आपका। अगर आपने नहीं बताया होता तो हमारा दोष निकलता कैसे, छूटता कैसे। नम्रता और सरलता दो बात मुख्य हो जाती है। सरलता सबसे बड़ा गुण है मुमुक्षु की भूमिका का, सरलता बहुत आती है। परिणाम में जो मन में जो दोष होता है उसको विदित करना है, ये बहुत सरलता होने से हो सकता है। बिना सरलता ये बात हो ही नहीं सकती। ये सरलता का सबसे बढ़िया एक सैंपल देखना है तो अपन देख सकते हैं, अपने 495 गए ना, खुद ही ज्ञानी होते हुए मुमुक्षुओं को अपना दोष विदित करते थे। मुमुक्षु मुमुक्षु को अपना दोष नहीं बता सकता, शिष्य गुरु को अपना दोष निवेदन करे संभावित बातें हो सकती है, लेकिन गुरु चला करके अपने शिष्य के पास अपना दोष का निवेदन करे ये बात तो कहीं देखी नहीं है। ऐसा एक दृष्टांत क्या जीवंत दृष्टांत इनके जीवन का यहाँ पर देखने को मिलता है। एक मुमुक्षु भाई त्रिभुवन भाई खंबात के हैं, इसके पर चिट्ठी लिखा है, इस पत्र में वो लिखते हैं कि प्रमाद दोष जैसा कोई दोष प्रसंग हमको भी वर्तता है। प्रमाद दोष मैंने क्या कि बंबई में वो धंधा के हिसाब से व्यापार के हिसाब से ठहरते थे तो उस जो कारोबार में उनको समय व्यतीत करने का होता था वो अपना समय बिगड़ता है। प्रमाद में जैसे समय बिगड़ता है वैसे धंधे व्यापार में कारोबार में जो समय व्यतीत होता है उसका नुकसान वो महसूस करते हैं। तो लिखते हैं कि प्रमाद दोष जैसा कोई दोष हमें भी वर्तते हैं, जिस कारण से परमार्थ बात लिखने के संबंध में भी चित्त को लिखते लिखते अटकना होता है। इस बात को लिखते लिखते आगे वो बताते हैं कि ज्यादा मैं लिख सकता नहीं हूं, उतना चित्त में खेद होता है, वरना तो प्रगट रूप से किसी मुमुक्षु को मैं इस जीव में मेरे मेरे परिणाम में इस जीव में दोष भी जितना बन सके उतना प्रकार से मैं विदित करके उस जीव का करके जीव का मैंने मेरे परिणाम का उतना खेद को मैं कम करूं। मेरे परिणाम में जो प्रमाद दोष होता है उसका मुझे खेद होता है, उसको कम कैसे करूं मैं कि अपनी वेदना दूसरे को बताऊं मैं, तो मैं भी हल्का सा होगा। और इस विदित दोष की परिसमाप्ति के लिए इस प्रकार से मेरा दोष कम होवे, उसका निमित्त कोई सामने जो मुमुक्षु जीव है जिसका संग हुआ के जिसके संग में मैंने मेरा दोष बताया, उस संग उपकार मैं इसका उपकार चाहूंगा कि ये भी मेरे लिए उपकारी है। कितने हद की सरलता है, तो मुमुक्षु को उपकारी समझते हैं, नम्रता भी कितनी और सरलता भी कितनी। कल रात को ये चिट्ठी पढ़ा, आप नहीं थे, कल रात को पढ़ा, ये तो अपना ग्रंथ चलता है उसमें, कल रात को डिक्टेशन दिया था इस पर। तो कितना सरलता और कितनी नम्रता का यहाँ पर दर्शन है। पुरुषार्थ भी है, नम्रता है, सरलता है। और ज्ञानी खुद चला करके अपना दोष मुमुक्षु को निवेदन करता है, निवेदन करता है उतना ही नहीं है, निवेदन करने लायक मुमुक्षु है, उसका संग हुआ है, वो उसको उपकारी समझते हैं। देखिए कहाँ की बात है, ऐसी चीजें शास्त्र में से नहीं मिलती है, ये तो जीवंत कथा है खुद के जीवन की। तो ऐसी चीजें शास्त्र में ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगी कहीं भी कि ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष गुणवान होते हैं, कितने गुणवान होते हैं, वो तो शास्त्र में से मिलने वाली चीज नहीं है, ऐसी चीज पत्र में से मिलती है। जिसको अपना आत्मा का शुद्धिकरण है करना है उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई है कि आत्मकल्याण का साधन में परम साधन, परम मैंने उत्कृष्ट साधन सत्संग है और सत्पुरुष के चरण समीप के निवास में जा रहना ही, उसी को मैं सत्संग कहता हूँ। सभी काल में उसकी दुर्लभता है, क्या सभी काल में इसकी दुर्लभता है। गुरुदेव जब प्रत्यक्ष थे, मौजूद थे, तब हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि गुरुदेव का योग मिला है, ये सबसे बड़ा पुण्य का योग है। पुण्य योग में तो संसार के पदार्थ बहुत मिल जाते हैं, राज काज भी मिल जाते हैं, सत्ता भी मिल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आदमी बन सकता है, या देवलोक का देव भी बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है हम। लेकिन ये पुण्य और इस पुण्य में बहुत बड़ा क्वालिटी का डिफरेंस है कि सत्पुरुष का योग मिले, इसकी दुर्लभता बहुत रही है। देवलोक का, देवी संपत्ति का जितने काल योग हुआ है वो अनंत बैर हुआ है, उतने काल उतने वक्त सत्पुरुष का योग नहीं मिला है, उसका कम योग मिला है, ऐसा पुण्य नहीं मिला है, ऐसा पुण्य बहुत मिला है। विश्व में कोई दुर्लभ से दुर्लभ योग हो तो ये सत्पुरुष में का योग होना है। सभी काल में मैंने चौथे काल में भी इसकी दुर्लभता, ये तो पंचम काल चल रहा है, लेकिन चौथे काल में भी इसकी दुर्लभता रही हमेशा। और ऐसे विषम काल में मैंने इस काल में उसका अत्यंत दुर्लभता होना ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने देखा है कि इस काल में तो इसकी बहुत दुर्लभता रहेगी, क्योंकि काफी समय तो सत्पुरुष ही नहीं होंगे, बीच में होते रहेंगे, कोई ज्ञानी होते रहेंगे, बीच में नहीं होंगे, ऐसा काल आ गया। तो बीच में जिसने जन्म लिया, एक जनरेशन दो जनरेशन ऐसी चल जाएगी कि जिसमें उसको ज्ञानी को योग मिलना ही मुश्किल है, कभी किसी को मिल गया और उसकी पात्रता होगी उसके समीप में रहने के, बहुत बड़ी बात है। वरना तो क्या, क्योंकि सत्पुरुष होते हैं लेकिन इसके समीप में रहने के अपना भाव नहीं रहता है, तो भी योग अयोग हो जाता है, अयोग के बराबर हो जाता है। और ऐसा भी बहुत वक्त ऐसा भी बना है। जी हाँ, बहुत होते हैं। चौथे काल में तीर्थंकरों का निग्रंथ बार मनुष्य हुए हैं। हमें ये विचार करना चाहिए कि हमने सरासर उपेक्षा की है जब हमारी स्थिति यहाँ है। क्या बात है, हमने सरासर उपेक्षा कर ली है, या तो हम कुछ विरुद्ध अभिप्राय में चले गए हैं कि वो ऐसे कहते हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है, हमको लगता है वो सही है, जाओ फिर तीर्थंकर के भी मानने वाला नहीं है ये जीव। जीव का भी प्रभुत्व गुण ऐसा है ना कि वो ऊंधा पड़ता है तो प्रभु का भी प्रभु बन जाता है। वो जीवंत दृष्टांत है कि गुरुदेव वगैरह वहां थे महाविदेह क्षेत्र में, ये तो जीवंत दृष्टांत है अपने सामने। वहां कोई अन्य मत तो है नहीं, स्थानक वासी संप्रदाय वहां नहीं चलता है, चलता है क्या, मोमबत्ती वाले कोई नहीं है, श्वेतांबर कोई नहीं है, एक ही वहां तो दिगंबर श्वेतांबर का भेद ही नहीं है, क्योंकि एक ही संप्रदाय चलता है, तीर्थंकरों से रहते हैं, निग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, इनका ही तत्व ज्ञान चलता है। अब देखिए स्थानकवासी में कैसा है, इस भाव में स्थानकवासी में आए इसका मतलब क्या कि पूर्व के भाव के परिणाम है, वहां कैसे ये परिणाम है। ये तो अच्छा था कि कुछ अविपरीत कार्य भी हो चुका था कि उन्होंने संस्कार झेल लिए थे। भगवान सिमंदर नाथ की वाणी सुनते सुनते सही बात को कुछ जमा ली थी, साथ साथ विपरीत बात भी कुछ जम गई, दोनों बात हो गई। तो इस विपरीतता के कारण स्थानकवासी में आ गया और इस अविपरीत का कारण ज्ञान प्राप्ति कर लिया समय सारांश में आते हुए। लेकिन जिसको संस्कार नहीं हो उसकी क्या हालत होगा, कि उसकी हालत ये होगा कि हम भी अनंत बेर महाविदे में गए, अनंत बार समशरण में गए, अनंत बार निग्रंथ गुरु के पास, इससे ज्यादा गए, इससे ज्यादा हम सत्पुरुष के पास गए, लेकिन हमारी विपरीतता भी कम नहीं रही कि जिससे हम यहाँ रुलते रुलते भटकते भटकते यहाँ पर बैठे हैं। यही सूचित करता है कि हमने काफी उपेक्षा की है या काफी विपरीतता की है, वरना ये हालत नहीं होती। अब जो बात है, अब इस वर्तमान संभालने की बात है, हो गया सो हो गया, जो हुआ वो नहीं हुआ होने वाला नहीं है। और आत्मा में शक्ति इतनी है कि जब से वो जागृत होता है बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। पात्रता एक सेकंड में आती है, दूसरी सब चीज में देर लगती है, क्रम पड़ता है। लेकिन कोई जीव कितना भी पापी हो, कितना भी नीच कोटि के परिणाम वाला जीव हो, उस जीव को पात्रता आने में कोई देर नहीं लगती, उसको नींव डालने में कोई देर नहीं लगती, एक सेकंड में ये हो सकता है। जब इसका अंतकरण में पलटा लगाता है कि बस अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा आत्महिति कर लेना है, बस वहां से उसको परिणाम की जो परिस्थिति है एकदम बदलती है, बहुत रेडिकल चेंज आता है इसके परिणाम में, और चमत्कारिक प्रोग्रेस हो सकता है अगर सही नींव डाल दी तो। चैतन्य का चमत्कार बहुत शक्ति आत्मा में, जो आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है क्योंकि मूल सिद्ध पद का सामर्थ्य लेके बैठा है, तो उसको तो ये काम तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसकी ताकत के आगे शक्ति के आगे ये काम तो कुछ नहीं है। ये तो चतुर्थ गुण स्थान के भी इसकी भूमिका का काम है, लेकिन हमेशा जो तकलीफ रही है वो मनुष्य की भूमिका, विटंबना जितनी भी है वो ज्ञान दशा प्राप्त होने के बाद कुछ नहीं है, वो तो लाइन क्लियर है। फिर इस गाड़ी के लिए ग्रीन सिग्नल है, हर जगह लाइन क्लियर है, रास्ता देखा है उन्होंने, अपना घर भी देखा है, घर का रास्ता भी देखा है, तो उसको तो लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। जो मुसीबत है वो उसको पहले ही है, जितने भी है, तो उसके लिए वैज्ञानिक तौर से साइंटिफिक बेस है बिल्कुल, कैसे चालू करना, कैसे शुरू होना और उसका क्रमशः प्रोग्रेस कैसे होना, बिल्कुल साइंटिफिक। उतनी बात समझ में आवे और अपना हित अहित को, सुख दुख को तुलना कर सके जी, तोल सके इस बात को, तो वजन इतना जाएगा, इतना वजन जाएगा इस बात पर कि सारे जगत को लात मारना आसान है। क्या वो क्या करता है वो जी, कि एक ऐसी किक लगाता है जगत को, मेरा हित के आगे से सारा जगत कुछ नहीं है, और सारे जगत में कौन सी चीज मेरे आत्मा में आने वाली है, कुछ मुझे तो मिलने वाला नहीं है, मैं तो खाली का खाली रहूंगा। कौन सी चीज आत्मा में आती है, वो तो अलिप्त निर्लेप पदार्थ है, स्वरूप से ही निर्लेप पदार्थ है, लेपायमान होता ही नहीं किसी से भी। जैसे जीभ पर कितना भी स्वाद आवे, कौन सा स्वाद ठहर सकता है वहां, आपको एक स्वाद अच्छा लगा रोक लो, इस स्वाद को रोको, इम्पॉसिबल। उतना नहीं हो सकता है, झड़के झड़के परिणाम में जीभ भी जड़ और स्वाद वाले आहार के परमाणु भी जड़, फिर भी वहां स्वाद नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान स्वतः स्वभाव से निर्लेप है, जान लेता है। कोई स्वाद का रस आत्मा में उतर सकता नहीं, आ सकता नहीं, सेकंडों में तो बात खत्म। ये पूरी परिस्थिति जब आती है तब सारी परिणाम की जो लाइन है वो डाइवर्ट हो जाती है।
जगत के प्रति जो अपेक्षा वृद्धि रहती है, जगत के प्रति जो अपेक्षा वृद्धि रहती है, अपेक्षा वृद्धि रहती है, या तो उसके प्रति जो दीनता के परिणाम रहते हैं वो बिल्कुल घट जाते हैं।
बिल्कुल हाँ, अपेक्षा वृत्ति टूट गई तो दीनता टूट गई, अपेक्षा हुई तो खुद दीनता है। कि एक सर्वोत्कृष्ट चीज जिसको हासिल करना है उसको तैयारी कितनी, उसको ये लगता है कि मैं कोई मामूली चीज के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा, मेरा प्रयत्न कोई मामूली चीज के लिए नहीं है, किसी को तो अपने गांव में बड़ा होना है, किसी को अपने स्टेट में बड़ा होना है, और किसी को अपने देश में बड़ा होना है, तो किसी को अपने माने हुई दुनिया में बड़ा होना है। ये भी छोटी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, अभी अपन आवागमन करते हैं, इससे भी मनुष्य क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, इससे बड़ा देवलोक है। अब ये जिसमें जिस जो जो भी बड़ा स्टेशन लेवल का जो स्टेटस है, उस स्टेटस से सबसे आगे का सिद्ध पद से आगे कोई स्टेटस नहीं है, अब जिसका प्रयत्न सिद्ध पद के लिए है, तो नीचे वाले सभी स्टेटस के लिए जो भी जगत के प्राणी प्रयत्न करता है, उससे अपना प्रयत्न तो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ये सभी प्लान से हमारा प्लान सबसे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? वहां तक वहां उतनी गंभीरता नहीं आएगी। इस कार्य की जो गंभीरता आनी चाहिए, सीरियसनेस जिसको कहते हैं, हर काम के पीछे इसकी सिंसियरिटी होनी बनती है। ये सिंसियरिटी नहीं होती है तो काम नहीं होता है। हर एक बात ऐसी होती है, हमने को पूरा पूरा ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों इधर आए हैं, क्यों आते हैं, आए क्यों इधर, अपने आप को पूछने का है। जगत दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम सारी दुनिया को एक साइड में रख करके यहाँ क्यों आए? अगर हम हमारा सिद्ध पद के लिए नहीं आए, पूर्ण शुद्धि, मैंने पूर्ण शुद्धि यानी परमार्थ, तो ये बात तो एक हॉबी की हो जाएगी, एक शौक की हो जाएगी। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं, ऐसे बात हो जाएगी। ऐसी चीज में ये काम नहीं होता है, कभी इसका कोई फायदा नहीं मिलता। हाँ, कर्णेन्द्रिय का विषय, जिसको जैसे संगीत प्रिय है वैसे आपको ये व्याख्यान प्रिय हो गया अपने कर्णेन्द्रिय में। ये तो अपने आत्मा को पूछना है कि क्या प्लान बराबर है अपना। प्लान का जिस वॉल्यूम होता है उसी के अनुपात में उसकी तैयारियां होती है। तो हमारी तैयारी क्या उस प्लान के अनुपात में है, क्या उसके प्रमाण में है, क्या इसे इसका रेशियो बराबर बैठता है, ये देख लेना, अपने आप को चेक करना है। तो देखो, बात तो पूरी पूरी गुरुदेव की कृपा से सामने आ गई है। ऐसा ही हुआ है अब तक कि हमने हमारा प्लान हर वक्त बदल दिया है, क्योंकि पहले से ही सही नहीं बनाया है, वरना तो तैयारी हमारी उसी के अनुपात में होती, तो यही करते आए हैं। अब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बात पूरी ध्यान में लक्ष्य पर आई है, ज्ञानियों की कृपा से, श्री गुरु की कृपा से, क्योंकि बात तो ये है कि तुमको इस लाइन का आत्मलाभ उठाना ही है, या सुखी होना ही है, या दुख से छूटना ही है। तो बात तो ये है, अगर दुख से छूटने का अंतकरण से भावना नहीं हुई है तो ऊपर ऊपर से काम चलेगा, ऊपर ऊपर से सब बातें होती रहेगी, सभी जो होगा वो ऊपर ऊपर से हो जाएगा। ये तो यूं छे कि मानस में रोग थाय छे, फिजिकल डिजीज, तो एमां पण उपचार ने बे पद्धति छे। एक मूल माथे जड़ से उसको निकालना, एक ऊपर ऊपर से उसको दबाना। जैसे हमारे एलोपैथी में हम ऊपर ऊपर से दबाते हैं, भीतर में रह जाती है, और आयुर्वेदिक में कहते हैं कि मूल से निकालते हैं, जड़ से निकालते हैं। दो पद्धति है ना उसमें भी। तो हमें क्या करना है कि ऊपर से तो ठीक हो जाए, अंदर से भले रह जाए, ये तो वांछनीय नहीं है। तो ये बात है, तो मूल से काम कैसे होगा? तो बुद्धिमान विचारवान आदमी को तो ये बात ही पसंद होती है। कब काम करना है तो ठोस करना है, वरना नहीं करना है। ऐसे रगड़ रगड़ करते रहे अनंत काल तक, ये कोई काम करने का ढंग है क्या? ये कोई पद्धति है क्या? तो ये बात ऐसी है कि सभी काल में ज्ञानी पुरुष का संयोग मिलना और पात्रता के साथ, मैंने ऐसे शुद्ध अंतकरण की भावना के साथ संयोग मिलना, ये बात नहीं हुई है। संयोग तो पुण्य योग से मिल जाता है कभी कभी, लेकिन काम नहीं होता तो मिला नहीं मिला, सब बराबर हो गया। ज्ञानी पुरुषों की प्रवृत्ति, अब आगे पत्र शुरू करते हैं कि ज्ञानी पुरुषों की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जैसी नहीं होती, जैसे खुद ही धंधा में कारोबार में अपनी गद्दी पे बैठते थे बम्बई में, तो इनकी प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति जैसी नहीं होती है। जैसे दूसरों लोगों की प्रवृत्ति है तन्मय होके, मैंने सर्वस्व मान करके वो जो काम करते हैं लोग, यही मेरा सर्वस्व है, ज्ञानियों के ऐसा नहीं होता। कुछ पूर्व प्रारब्ध के कारण उस संयोग में उसको देखने में आते हैं, लेकिन उसका वहाँ जी नहीं लगता, आत्मा वहाँ चौंटती नहीं है, परिणाम चौंटता नहीं है। यही कहेंगे वो कि ज्ञानी पुरुषों की प्रवृत्ति प्रवृत्ति जैसी नहीं होती, जैसे गर्म पानी के गर्म पानी से में अग्नि का मुख्य गुण कह सकते नहीं, उष्णता होने पर भी, गर्म पानी में उष्णता होने पर भी अग्नि का मुख्य गुण हम नहीं कह सकते। अग्नि उष्ण भी है फिर भी वो जलाती है, आग लग सकती है, पानी कितना भी गर्म हो आग नहीं लग सकती है, आग लगी हो तो गर्म पानी से भी बुझ सकती है, लेकिन आग लग सकती नहीं है। पानी ठंडा हो या गर्म आग को बुझाने में काम करता है, आग लगा नहीं सकते इसे। ऐसे ज्ञानी पुरुषों की जो सांसारिक प्रवृत्ति होती है उसे संसार बढ़ सकता नहीं। संसार बढ़ सकता नहीं उससे, तो वो गुण नहीं है, कषाय है उसमें, विषय कषाय दोनों है फिर भी संसार नहीं बढ़ सकता। दूसरे जीवों की प्रवृत्ति ऐसी है कि जिससे आग लग जाए, मैंने कितना जल जाए, आग लगे तो कितनी बढ़ जाए कह नहीं सकते। ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति गर्म पानी जैसी है, आग नहीं लग सकती इसे। वैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति है, तथापि ऐसे होने पर भी ज्ञानी पुरुष भी निवृत्ति को चाहते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे कैसे भी हम ये प्रवृत्ति से छुटकर निवृत्ति में रह करके हमारे आत्म कल्याण में हमारा समय व्यतीत करें, यही इच्छा और यही भावना उनकी भी रहती है। अब अपने स्वयं के विषय में वो लिखते हैं, क्योंकि उनको जाति स्मरण था, पूर्व भव के बहुत से बातें उनको स्मरण में आती थी, उसका जिक्र है इधर कि पूर्वे आराधन किए हुए ऐसे निवृत्ति क्षेत्र वन उपवन, वो भूतकाल में इधर की पहाड़ियों में चले जाते थे, वहाँ इस भव में गए तो भी वहाँ वो शब्द निकाले हैं कि पूर्व भव में हम इधर आए हैं, बहुत सत्संग इसी जगह पे हमने किया है और बहुत वैराग्य समेत सत्संग को हमने आराधन किया है, वही जगह है। तो इस भव में वो ध्यान करने के लिए वहाँ जाते थे, इधर वहाँ घंटियों पाठ छे ध्यान अत्यारे आश्रम बनाए हुए छे, बहुत सारी जगह से एकांत पा रहे हुए ना मटे तो बहुत सारी जगह से। पूर्वे आराधन किए हुए ऐसे निवृत्ति क्षेत्र वन उपवन योग समाधि और सत्संग आदि ज्ञानी पुरुष को मैंने हमको प्रवृत्ति में बैठे हुए बार बार स्मृति में आता है। बैठे है तो बंबई की गद्दी पे, पाई धुने जवारी बाजार में बैठे हैं और उसको स्मरण होता है जंगलों का, वन उपवन का, ये प्रवृत्ति क्षेत्र में निवृत्ति का स्मरण आता है और इच्छा होती है कि हम ये प्रवृत्ति को छोड़कर ऐसे क्षेत्र में और ऐसे काम में कैसे लगे। तथापि उदय प्राप्त प्रारब्ध को ज्ञानी अनुसरण करते हैं। जो भी उदय प्राप्त प्रारब्ध है उसमें दिल नहीं लगता है, फिर भी बाहर से तो अनुसरण कर लेते हैं। जैसे किसको सजा भुगतनी पड़ती है अपने अपराध की, तो जेल में बोलते कि पत्थर को तोड़ो तुम, इस खड्डे को खोदो तुम, तो उसको क्या अच्छा लगता है क्या? खाने तो पूरा मिले नहीं खाना है तो, और काम तो इससे ज्यादा करना पड़े। वैसे वो समझते हैं कि पूर्व हमारा अपराध है, हमारे अपराध से आए हुए हैं इस संजोग में, ये सजा भुगतनी है, उसमें कोई आनंद नहीं लेना है, सुख नहीं महसूस करना है, एक सजा है हमारे अपराध की, प्रमाणिक तौर से उसको भुगतान कर लेनी है। चलो बात खत्म। सत्संग की रुचि रहती है, उसका लक्ष्य रहता है, सत्संग की रुचि हमें भी रहती है, उसका लक्ष्य रहता है, फिर भी अभी तो ये नियमित रूप से मैंने रेगुलरली हो नहीं सकता, हो नहीं पाता है। ऐसे ही उदय में हम खड़े हैं। ऐसा करके उन्होंने ये पहले पोस्टकार्ड में सत्संग की प्रेरणा देते हुए कुछ अपना भी परिणाम को निवेदन कर दिया है कि हमारी ये स्थिति है, लेकिन हमको यही स्मरण में रहता है कि कैसे भूतकाल में कैसी निवृत्ति थी, पूर्व भाव में कैसा सत्संग मिलता था, कैसी निवृत्ति थी, कैसा हमारा आत्मकल्याण के विषय में कार्य चलता था, अभी ये क्या हो गया, कहाँ आ गए हम, जैसे प्रदेश में आ गए, अनजाने क्षेत्र में, अनजाने काल में। बहुत अच्छा लिखा है, आगे जाकर के लिखा है इस बात में। અહીંયા બધું અજાણ્યું લાગે છે, ચેપુજી બેન શ્રી લખ્યું છે ને પરદેશમાં આવી ગયા અમે, એવી જ વાત એમણે લખી છે। परदेश की दशा मुंबई ने, परदेश की दशा इधर ने नहीं, मुंबई में बैठा बैठा लखे से कि आमा परदेश में आ गया, इधर नहीं बात नहीं थी। इधर तो हमने बहुत पसंद है, तो निकली जाता था रात्रे दिवसे गमे त्यारे पण पहाड़ों में निकली जाता था। યાદ નથી આવ્યું ક્યાં ક્યાં પત્રમાં છે, પણ હમણાં જ જોયું હતું આપણે. ફાઇલમાં બપોર જ રેફરન્સ મળી જશે, ફાઇલમાં જશે મળી જશે. એ કઈ આપણા હિસાબ કિતાબ નો આપણું ગણિત કઈ ગણી શકીએ એવી વિષય નથી લાગતો, એવી વાત છે થોડી. એટલે પછી બહુ એનો વિચાર લંબાવતા નથી, કેમ કે મેળમેળવો બહુ મુશ્કેલ છે. એમણે કોઈ ટાઈમ પિરિયડ બાંધ્યો નથી કે હું આ પિરિયડની વાત કરું છું, હું આ પિરિયડની વાત કરું છું, એવું નથી બાંધ્યું. પણ ગતભાવમાં એ ઈડરમાં મનુષ્યપણે હશે એવું વાત તો દેખાય છે. એટલા માટે કે ઈડરની જે પાઠશાળા છે, ત્યાં ચાર પાંચ જૈન મંદિર છે, એમાં એક જૈન મંદિરમાં પાઠશાળા છે બહુ પુરાણી, અમે જઈ આવ્યા છીએ પાઠશાળામાં. ત્યાં એમણે ગામમાં આવ્યા પછી એમ કીધું કે ભાઈ પાઠશાળામાંથી આ જગ્યાએ દ્રવ્ય સંગ્રહ મૂક્યું છે એ લઈ આવો તમે. તો અમુક જગ્યાએ અમુક પુસ્તક પડ્યું છે એ ક્યાંથી ખબર પડે? નજીકના ભવિષ્યમાં હોય તો જ. એટલે એ ઉપરથી એમ લાગે છે કે આગલા ભાવમાં પણ મનુષ્ય હોવા જોઈએ અને ઈડરમાં હોવા જોઈએ એમ લાગે છે. મુનિ હોય ને તો દેવલોકમાં જાય પાછા, અશુભ પરિણામ હોય ને એને ઘાતી નો મોટો બંધ પડે. એમાં કઈ સવાલ નથી, મનુષ્ય મોટી ને મનુષ્ય થાય છે કોઈ, પણ એ બહુ રેર કેસમાં, બહુ રેર કેસમાં. કોઈ બહુ રેર કેસ એટલે હજારોમાં નહીં, લાખોમાં નહીં, કરોડોમાં કોઈ, અબજોમાં કોઈ, એવા રેર કેસમાં. બાકી તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ મળે એટલે મોટા ભાગે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં તિર્યંચમાં જાય, કોક જ દેવલોકમાં જાય, કેમ કે એટલા શુભ પરિણામ નથી આવતા. અશુભ પરિણામ જીવન દરમિયાન વધારે હોય છે, શુભરસ વધારે હોય છે, તો મોટા ભાગે તો ત્રિંચ ગતિમાં જાય. એ અત્યારની પરિસ્થિતિ, સામાન્ય પરિસ્થિતિ એ છે. પછી વિશેષપણે તો કોઈ દેવમાં જાય, કોઈ નારકીમાં જાય, એવું પણ બને, મનુષ્ય પણ કોઈ થાય, પણ બહુ મનુષ્ય થવાની પરિસ્થિતિ બહુ ઓછી છે. મનુષ્યમાં એવું ગણિત છે કે નો લોસ નો પ્રોફિટનું બેલેન્સ શીટ આવે તો મનુષ્ય ગતિ જાય તો ક્યારે બને? નો લોસ નો પ્રોફિટ ક્યારે બને સર્વૈયામાં?
મુનિ પણ હોય તો મનુષ્ય થવાનો શક્યતા જ નથી. મુનિ પણ હોય તો મનુષ્ય થવાની શક્યતા
દેવલોકમાં જાય, જ્ઞાનીને દેવલોકમાં જવું પડે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ મનુષ્ય હોય, બહુ મધ્યસ્થ અને સરળ પરિણામી હોય, સરળ પરિણામી બહુ, સરળતા બહુ હોય, તો કોઈને એમ થાય કે આટલું બધું નુકસાન જાય તો સરળતા રાખે છે, પોતાને આટલું નુકસાન જાય તો એ સરળતાથી રાખે છે, એવો સરળ માણસ હોય મનુષ્ય થાય. સરળતા મુખ્ય વસ્તુ છે, મનુષ્યપણા થવા માટે સરળતાનો ગુણ મુખ્ય વાત છે. કારણ કે જરાક પોતાને પ્રતિકૂળતા લાગે એટલે માયાચાર થવો સહેજ છે. નાનો છોકરો હોય ને 5 વર્ષનો, એને એમ કરે કે તું લેસન કર, તો હા લેસન કરવા બેસી જાય. જો કોઈ બધા આકા પાછા થઈ ગયા છે તો રમવા લાગી જાય, આવે એટલે ક્યાં ગયો તો ઓલો સાંભળે ઘરે આ તો આવી ગયા લાગે, ક્યાં ગયો તો? તો હું રમવા ગયો તો નહીં કે પિશાબ કરવા ગયો તો નહીં. માયાચાર કરવી તો બાળકને એક એટલું બધું સ્વાભાવિક થઈ જાય છે કે મને વર્ષે સજે સજે માયાચાર કરી લે. આટલી બધી માયાની પ્રકૃતિનો પ્રભાવ છે જીવ ઉપર, એમાં સરળતા તો બહુ મોટી વાત છે. એ સરળતા વાળો જીવ મનુષ્ય માટે મનુષ્ય થાય છે. સરળ પરિણામે તો આવ્યો છે, અત્યારે આવ્યો છે, સરળ પરિણામે આવ્યો છે, નહીં તો મનુષ્ય પણ હોય નહીં. હવે તો તકનો લાભ ઉઠાવવાનો છે, નહીં તો તિર્યંજ ગતિ બહુ મોટી છે, એનું પેટ મોટું છે. તિર્યંજ ગતિમાં બધા કરતા સંખ્યા બહુ મોટી છે, કેમ કે ત્રણેય ગતિમાંથી ત્યાં જીવો વધારે જાય છે, એટલે એ ભયંકર પરિસ્થિતિ છે. મન બીજી ત્રણ ગતિમાં મન છે, નારકીને મન છે, દેવને મન છે, મનુષ્યને પણ મન છે. મન છે એટલે વિચાર શક્તિ છે, કે પોતાના હિત હિતનું વિચાર વિવેક કરી શકે. તિર્યંચમાં અમુક લેવલે જ છે મનવાળા પ્રાણી, આ સિંહ વાઘ બકરા માછલી દેડકા કૂતરા મીંદડી ઉંદરડા એ બધા મનવાળા છે, સર્પ છે, પણ એ અમુક જ છે. પછી તરત જ અસંગની પંચેન્દ્રિયથી ચાર ઇન્દ્રિય ત્રણ ઇન્દ્રિય બે ઇન્દ્રિય એક ઇન્દ્રિય બધા મન વગરના છે. કેમ મન વગરના છે? કે મન મળ્યું ત્યારે હિત અહિતનો વિવેક કરવાનો લાભ ન લીધો, ઉપેક્ષા કરી, એટલે વિચારવાની શક્તિ મળી છતાં એ શક્તિનો ઉપયોગ ન કર્યો, દુરુપયોગ કર્યો. જા કુદરત એવી પરિસ્થિતિમાં રાખે છે, મન નહીં મળે, વિચાર વિવેક કરવાની શક્તિ ખલાસ થઈ જશે. એ વાત છે, જોઈએ છે. Thank you, John.